सफ़ा नंबर 135। दूसरा वाक्य जो इकबाल ने अपने वालद की शख्सियत के मुतलक रमूज बेखुदी में नज़म किया है, इसकी तफसील कुछ यूं है। एक दफ़ा कोई साहिल भीख मांगता हुआ इनके घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, और बावजूद दिक्का कि इसे कई बार जाने के लिए कहा गया और वो अड़ियल फकील टलने का नाम ना लेता था। इकबाल अभी अनफवान शबाब में थे, इनके बार बार सदा लगाने पर इन्हें तैश आ गया और इसे दो तीन थप्पड़ दे मारे, जिसकी वजह से जो कुछ इसकी झोली में था ज़मीन पर गिर कर मुंतशिर हो गया। वालद इनकी इस हरकत पर बेहद आरजूदा हो गए और आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, क़यामत के दिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द गाजियान इस्लाम, हुक्मा, शहदा, जहाद, सूफिया, उलमा और आसियान शर्मसार जमा होंगे, तो इस मजमा में इस मजलूम गदा की फरियाद अन हजूर की निगाह मुबारक को अपनी तरफ मरतकज़ कर लेगी, और अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे कि तेरे सुपुर्द एक मुस्लिम नौजवान किया गया था ताकि तू इसकी तरबियत हमारे वाजे करदा असूलों के मुताबिक करे, लेकिन ये आसान काम भी तुझसे ना हो सका कि इस खाक के तोते को इंसान बना देता, तो तब मैं अपने आका व मौला को क्या जवाब दूंगा। बेटा, इस मजमा का ख्याल कर और मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख, और देख मैं खौफ और उम्मीद से किस तरह कांप रहा हूँ। बाप पर इतना जुल्म ना कर, और खुदा रहा मेरे मौला के सामने मुझे यूं जलील ना कर। तू चमन मुहम्मदी की एक कली है, इसलिए इसी चमन की नसीम से फूल बनकर खिल और इसी चमन की बहार से रंगो बू पकड़, ताकि अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक की खुशबू तुझ से आ सके। इकबाल के वालद का ये मामूल था कि जब भी इन्हीं किसी बात से टोकते या इनको कुछ करने से मना करते तो हमेशा कुरान मजीद या उसवाए रसूल की सनद से पंदो नसीहत कर फरमाते। इकबाल इनके मुंह से जब कुरान मजीद की कोई आयत या हदीस अन हजूर सुनते तो चेहरे पर किसी किस्म की नागवारी का इजहार किए बगैर खामोश हो जाते। इकबाल खुद बयान करते हैं कि जब वो सियालकोट में पढ़ते थे तो रोजाना सुबह उठकर तलावते कुरान किया करते थे, मगर इनके वालद और अदू वज़ाइफ से फुर्सत पाकर आते और इन्हें देखकर गुजर जाते। एक दिन सुबह सवेरे इनके करीब से गुजरे तो फरमाया कि कभी फुर्सत मिली तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। बिल आखिर इन्होंने कुछ मुद्दत बाद इकबाल के इसरार पर वो बात बता दी। एक दिन सुबह जब इकबाल हसबे दस्तूर कुरान मजीद की तलावत कर रहे थे तो वो इनके पास आए और शफकत से फरमाया, बेटा मुझे कहना ये था कि जब तुम कुरान पढ़ो तो ये समझो कि कुरान तुम पर ही उतरा है, यानी अल्लाह तुमसे हम कलाम है। गलबन इकबाल ने एक शेर में इसी वाक्य की तरफ इशारा किया है, तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नजूल ले किताब, ग्राकशा रहेंगी ना राजी ना साहबे कशाफ। इकबाल मजीद बयान करते हैं, एक दिन वालिद महरूम ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे पढ़ाने लिखाने में जो मेहनत सरफ की है मैं तुमसे इसका मुआवजा चाहता हूँ। मैंने बड़े शौक से पूछा कि वो क्या है। वाला साहब ने कहा कि किसी मौके पर बताऊंगा। चुनाचा उन्होंने एक दफ़ा कहा कि बेटा मेरी मेहनत का मुआवजा यह है कि तुम इस्लाम की खिदमत करना। बात ख़त्म हो गई। इसके बाद मैंने इम्तिहान वगैरह देकर और कामयाब होकर लाहौर काम शुरू कर दिया। साथ ही मेरी शायरी का चर्चा फैला, नौजवानों के लिए इस्लाम का तराना बनाया और दूसरी नज़में लिखीं, और लोगों ने इनको ज़ौक व शौक से पढ़ा और सुना और सामईन में वलवला पैदा होने लगा। तो इन ही दिनों मेरे वालिद मर्जुल मौत में बीमार हुए। मैं इनके देखने को लाहौर से आया करता था। एक दिन मैंने पूछा कि आपसे मैंने जो इस्लाम की खिदमत का अहद किया था वो पूरा किया या नहीं। उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर शहादत दी कि तुमने मेरी मेहनत का मुआवजा अदा कर दिया। इसी सिलसिले में चंद वाक्यात शेख इजाज अहमद के हवाले से रोजगार फकीर जिल्द दो में दर्ज किए गए हैं। इकबाल की बहनों की अजवाजी जिंदगियों पर परेशानियों ही में गुजरी। फातिमा बी के अपने शोहर से तल्लुकात अच्छे ना थे, तला बी जवान उम्र में ही फौत हो गई थी। करीम बी भी अपने शोहर की दूसरी शादी के सबब अरसा तक अपने भाइयों के पास रहीं। जैनब बी की शादी वजीराबाद के घराने में हुई थी, लेकिन गलबन बे औलाद होने के बायस इनकी खुश दामन ने ससुराल में इन्हें रहने ना दिया और वह मजबूरन मेके चली आई। कई साल वहीं रहीं। इस दौरान इनकी सास ने बेटे की दूसरी शादी कर दी और बाद में वो अपनी इस दूसरी बहू पर भी सौतन ले आई। इकबाल के बहनोई एक सादतमंद बेटे की तरह माँ की जिंदगी भर तो इनके हर हुक्म की तामील करते रहे, लेकिन माँ की वफात के बाद उन्होंने अपनी पहली बीवी को बसाना चाहा। मसहलत की कोशिश होने लगी। इकबाल के वालदैन बिलाकर रजामंद हो गए। لہٰذا اقبال کے بنوئی ان کی رضامندی کا سہارا پا کر کچھ عزیزوں کے ساتھ زینب بی کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے سسرال آئے۔ اتفاق سے ان دنوں اقبال بھی سیالکوٹ میں موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بہنوئی مسہلت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں تو وہ بہت برہم ہوئے۔ والد نے بہترا سمجھایا، لیکن اقبال یہی کہتے رہے کہ مسہلت ہرگز نہیں ہوگی، آنے والوں کو واپس کر دیا جائے۔ والد نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح بھی رضا مند نہیں تو انہوں نے اپنے مخصوص نرم انداز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وصلہ خیر کہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اقبال خاموش ہو گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا جیسے کسی نے سلگتی ہوئی آگ پر برف کی سل رکھ دی ہو۔ کچھ تھوڑے عرصے بعد والد نے پھر پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ اقبال نے جواب دیا، وہی جو قرآن کہتا ہے، چنچہ مسہلت ہوگی اور یہ صلح خیر ہی ثابت ہوئی۔ پہلی بیوی ہونے کی حیثیت سے گھر کا پورا اختیار زینب بی کے ہاتھ میں رہا۔ مسہلت کے چند دنوں بعد ہی اقبال کو بہنوئی پر اس قدر اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نجی معاملات میں بھی ان کے مشورے پر عمل کرتے اور ان کی خیر خواہی کی قدر کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اعجاز احمد کو ان کی پھوپھی کریم بی نے بتایا کہ میاں جی کو اسم اعظم معلوم ہے جسے وہ بھائی صاحب اقبال کو سکھا چکے ہیں۔ اقبال جب لاہور سے سیالکوٹ آئے تو اعجاز احمد نے ان سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ میاں جی نے آپ کو اسم اعظم سکھا دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات تو میاں جی سے خود پوچھنا۔ چنانچہ اعجاز احمد نے میاں جی سے اسم اعظم کے متعلق دریافت کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مشکلوں کو حل کرتی ہے، اس لیے دعا ہی اسم اعظم ہے۔ قبول دعا کا ایک نسخہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ہر دعا سے قبل اور بعد میں ان حضور پر درود بھیجا جائے، کیونکہ درود سے بڑھ کر اور کوئی اسم اعظم نہیں، اور میں نے یہی اسم اعظم تمہارے چچا کو سکھایا ہے۔ کسی اور موقع پر فرمایا کہ اسم الہی میں یا یہی یا قیوم کا ورد باکثرت کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 139۔ راقم نے شیخ نور محمد کو بہت ضعیف العمر میں دیکھا ہے۔ جب ان کی بصارت جواب دے چکی تھی اور وہ کمرے کی تنہائی میں اپنے پلنگ پر گمسم بیٹھے رہتے تھے۔ دراصل تنہائی کا احساس تو انہیں 15-16 برس بیشتر والدہ اقبال کی وفات پر ہی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بی جی کی وفات کا صدمہ ان کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ وہ شاعر تو نہ تھے مگر اس صدمہ کے زیر اثر انہوں نے ایک دن اعجاز احمد سے کاغذ اور قلم دوات لانے کے لیے کہا۔ اعجاز احمد سمجھے کہ شاید اقبال کو خط لکھوائیں گے۔ فرمایا کہ جو کچھ بولتا ہوں لکھتے جاؤ اور پھر اس کاغذ کو اپنے چچا کے پاس بھیج دو۔ میاں جی سوچ سوچ کر شعر لکھواتے جاتے تھے۔ چنانچہ 2-3 نشستوں میں انہوں نے 10-12 شعر قلم بند کروائے۔ ان اشعار میں ایک شعر شیخ اعجاز احمد نے لکھوایا ہے، یہ تنہا زندگی پیری ہے، نصف الموت ہوتی ہے، نہ کوئی ہم سخن اپنا، نہ کوئی رازداں اپنا۔ اشعار اقبال کو بھیج دیا گیا، جنہوں نے کچھ عرصے بعد اپنی نظم والدہ محرومہ کی یاد میں کاتب سے خوش خط لکھوا کر میاں جی کو ارسال کر دی۔ ویسے بھی اقبال کی جو تصانیف میاں جی کی زندگی میں شائع ہوئی وہ ان کی زیر مطالعہ رہتی تھی۔ اقبال کی والدہ نے بھی ان کی تربیت میں نمایاں حصہ لیا۔ وہ ایک نہایت اچھی منتظم تھی اور اقبال سے بے حد محبت کرتی تھی۔ گھر میں ان کی موجودگی اقبال کے سیالکوٹ آنے کے لیے باعث کشش تھی۔ جب یورپ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہ ان کے خط کا انتظار میں بیٹھا کرتی۔ ان کی وفات پر اقبال نے جو مرثیہ کہا اس میں ایک جگہ کہتے ہیں، خاک کے مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تربیت سے میں تیری انجمن کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زرین ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ اسی طرح انہی اپنے بڑے بھائی سے بھی جن کی آنت سے اقبال نے اپنی تعلیم کے مراحل طے کیے بے حد محبت تھی۔ شیخ عطا محمد قد داور مضبوط جسم اور باروب شخصیت کے مالک تھے، طبیعت کے سخت تھے مگر دل کے صاف۔ انہی جتنی جلدی غصہ چڑھتا اتنی جلدی اتر جاتا۔ فوجی ملازمت ان کے مزاج کے عین مطابق تھی۔ وہ ہمیشہ مغربی لباس زیب تن کرتے لیکن سر پر موتیے یا سیاہ رنگ کی لنگی باندھتے، ہاتھ میں ہنٹر رکھتے، بہت خوش پوش تھے اور گھر میں ان کا بڑا دبدبا تھا۔ اقبال التجائے مسافر میں ان کے متعلق ارشاد کرتے ہیں، وہ میرا یوسف ثانی، وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جان مجھ کو، جلا کے جس کی محبت نے دفتر من و تو وائے عیش میں پالا، کیا جوان مجھ کو ریاض دہر میں مانند گل خندقا کہ ہے عزیز تر اس جان، وہ جان جان مجھ کو۔ वालदा की वफात पर मरसिए में इकबाल इन अल्फाज में शेख अता मोहम्मद के गम व अंदा का नक्शा खींचते हैं। वो जवां कदामत में है जो सूरत सरो बुलंद, तेरी खिदमत से हुआ जो मुझसे बढ़कर बहरामंद। कारोबारे जिंदगानी में वो हम पहलू मेरा, वो मोहब्बत में तेरी तस्वीर वो बाजू मेरा। तुझको मिसल तफलक में दस्तो बपा रोता है मुँह, सबर से नाशना सुबो व मसार रोता है वो। इंसान के असल असाज़ा तो इसके वालदैन ही होते हैं, जिनसे जो कुछ शायरी या गैर शौरी तौर पर हासिल किया जाता है, इसके नक्शूस नहायत गहरे और अनमिनट होते हैं। इन वाकयात की रोशनी में कहा जा सकता है कि इकबाल के घर का माहौल एक ऐसा दीन दराना और दरवेशराना माहौल था, जिसमें मोहब्बत व शफकत के साथ इज्जत व एहतराम का बड़ा दखल था। इकबाल गो लताइफ वजदानी को तस्लीम करते थे और इनके वर्द का ज़ाती तजर्बा भी किसी हद तक रखते थे। लेकिन ये हकीकत है कि बाद की जिंदगी में तसव्वुफ के बारे में इल्मी एतबार से इनके जहन में कुछ उलझने पैदा हुई और इनका जाविया निगाह बदल गया था। बहरहाल 1891 में इकबाल ने मिडल का इम्तिहान पास किया और 9वीं जमात में दाखिल हुए। इस वक्त इनकी उम्र 14-15 साल थी। सवाल पैदा होता है कि इन्होंने शेर कहने कब शुरू किए। इस बात का जवाब वसूख से तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शेरों से मुनासिबत तो इन्हीं बचपन ही से थी। मुमकिन है इस उम्र में बकायदा तबा आजमाई की इब्तदा हुई हो। यक्ता हकानी अमरोही अपनी किताब सीरत इकबाल में तहरीर करते हैं कि इकबाल की तबीयत का रुझान नौ उम्री ही से शेर व शायरी की तरफ था। बचपन में वो अक्सर फिक्रे ऐसे बोल जाते थे जो किसी ना किसी बहर या वजन में होते थे। इसके बाद स्कूल में अक्सर छोटी छोटी गजलें कहा करते थे और इनको किसी काबल ना समझते हुए फाड़ कर फेंक देते। लेकिन इसके बाद जो जो इनकी सैयद मीर हसन से वाबस्तगी बढ़ी तो बाकायदा शायरी की तहरीक सैयद मीर हसन ही के फिजाने सोबत से ही उन्होंने इब्तदाई जमाना में इन ही से इसलाह ली। ये बात सैयद मीर हसन के छोटे बेटे और इकबाल के हमजोली सैयद जकी शाह भी बयान करते हैं कि इकबाल ने अपनी इब्तदाई मशक में गजलों की इसलाह में मेरे वालिद से फैज हासिल किया, जिसका वो अक्सर जिक्र किया करते थे। मगर हमारे सामने ऐसा बयान भी है जिसमें इकबाल ने इरशाद किया है कि शाह साहब के एहतराम के पेश नज़र वो इनके रूबरू शेर कहने की जुरत ना करते थे। मुमकिन है सैयद मीर हसन के फिजाने सोहबत से इकबाल को शायरी की तारीख हुई हो, मगर यह कहना शायद दुरुस्त नहीं कि सैयद मीर हसन फन शेर गोई में इकबाल के उस्ताद अव्वल थे। अगर इकबाल इब्तदाई मराहल में से इनसे इसलाह लेते तो फिर इन्हीं मराहल में दाग की शायरी इख्तियार करने की क्या जरूरत थी। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि इकबाल ने सैयद मीर हसन के मशवरे से दाग की शागिर्दी इख्तियार की। इकबाल ने 1893 में मैट्रिक के इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न लेकर कामयाबी हासिल की और तमगे और वजीफे से सरफराज हुए। तब इनकी उम्र 16 वर्ष थी। मैट्रिक का नतीजा 4 मई 1893 को निकला और वो 5 मई 1893 को स्कॉच मिशन कॉलेज में दाखिल हो गए। इस वक्त तक स्कॉच मिशन स्कूल में इंटरमीडिएट की क्लासेस जारी हो चुकी थी और इसी बिना पर इसका नाम स्कॉच मिशन कॉलेज रख दिया गया था। इसलिए इकबाल ने मैट्रिक पास करने के बाद FA की तलीम वहीं जारी रखी। इकबाल की चंद पुरानी गजलों से जो रसाला जुबान दिल्ली के शुमारा नवंबर 1893 और बाद के शुमारों में शाया हुई, जाहिर होता है कि वो ना सिर्फ 16-17 साल की उम्र में अच्छी गजलें कहने लगे, बल्कि इनकी गजलें दिल्ली के रसालों की जीनत भी बनती गईं। सफा नंबर 142, इनकी जो गजल जुबान दिल्ली के शुमारा फरवरी 1894 में शाया हुई, इसका मकता है, गरम हम पर जो कभी होता है वो बुत इकबाल हजरत दाग के अशार सुना देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इकबाल ने मीर्जा खान दाग 1831 ता 1905 की शिगिर्दी कब इख्तियार की। जुबान दिल्ली के शुमारा नवंबर 1893 में प्रोफेसर हमीद अहमद खान के हवाले से इकबाल को बुलबुल हिंद हजरत दाग दहलवी का तलमीज़ लिखा गया है और इस शुमारे में इकबाल की गज़ल इनकी अब तक दरियाफ्त शुदा गज़लों में से सबसे कदीम तरीन है। इसलिए कहा जा सकता है कि इकबाल FA के साल अव्वल के दौरान में दाग के शिगिर्द हुए। 1909 में फोक ने इकबाल के जो मुख्तसर हालात ज़िंदगी तहरीर किए हैं, इनमें दर्ज है कि इकबाल ने FA की तलब इल्मी के दिनों में दाग से इसलाह लेनी शुरू की। श्री राम ने अपनी तशरीफ में लिखा है कि इकबाल ने इब्तदा में चंद गज़लें मिर्ज़ा अरशद गोरगानी को दिखाई और फिर दाग से बजरिया खतो कताबत तलमज़ अख्तियार किया, मगर यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि अरशद गोरगानी से इकबाल की पहली मुलाकात भाटी दरवाज़ा लाहौर के एक मुशायरा में 1895 के बाद हुई। सर अब्दुल कादर बांगे दरा के दबीचा में तहरीर करते हैं कि इकबाल अभी स्कूल ही में पढ़ते थे कि कलाम मौजू जुबान से निकलने लगा। पंजाब में उर्दू का रवाज इस कदर हो गया था कि हर शहर में जुबानदानी और शेर व शायरी का चर्चा कमोबेश मौजूद था। सियालकोट में भी शेख मोहम्मद इकबाल की तालब इल्मी के दिनों में एक छोटा सा मुशायरा होता था। इसके लिए इकबाल ने कभी कभी गजल लिखना शुरू कर दी। शुराए उर्दू में इन दिनों नवाब मिर्जा खान साहब दाग देलवी का बड़ा शोहरा था और निज़ाम दक्कन के उस्ताद होने से इनकी शोहरत और भी बढ़ गई थी। लोग जो इनके पास जा नहीं सकते थे, खत व कताबत के जरिए दूर ही से इनकी शागिर्दगी की निस्बत पैदा करते थे। गजलें डाक में इनके पास जाती और वो इसलाह के बाद वापस भिजवाते। पिछले जमाने में जब डाक का ये इंतज़ाम ना था, किसी शायर को इतने शागिर्द मैसर कैसे आ सकते थे। अब इस सहूलत की वजह से ये हाल था कि सैकड़ों आदमी इनके इनसे गायबाना तलमज रखते थे और इन्हें इस काम के लिए एक अमला और महकमा रखना पड़ता था। शेख मोहम्मद इकबाल ने भी इन्हीं खात लिखा और चंद गज़लें इसलाह के लिए भेजी। इसी तरह इकबाल को उर्दू दानी के लिए भी ऐसे उस्ताद से निस्बत पैदा हुई जो अपने वक्त में जुबान की खूबी के लिहाज से फने गज़ल में यकता समझा जाता था। गो इस इब्तदाई गज़ल गोई में वो बातें तो मौजूद ना थी जिनसे बाद अजाम कलाम इकबाल ने शोहरत पाई, मगर जनाब दाग पहचान गया कि पंजाब के एक दूर अफ्तादा जिला का तालिब इलम कोई मामूली गजल गो नहीं। उन्होंने जल्द कह दिया कि कलाम में इसलाह की गुंजाइश बहुत कम है और यह सिलसिला तलमज का बहुत देर कायम नहीं रहा। अलबत्ता इसकी याद दोनों तरफ रह गई। दाग का नाम उर्दू शायरी में ऐसे पाया रखता है कि इकबाल के दिल में दाग से इस मुख्तसर और गायबाना तल्लक की भी कदर है और इकबाल ने दाग की ज़िंदगी ही में कबूल आम का वो दर्जा हासिल कर लिया था कि दाग मरहूम इस बात पर फख्र करते थे कि इकबाल भी इन में शामिल है जिनके कलाम की इन्होंने इसलाह की। मुझे खुद दक्कन में इनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ और मैंने खुद ऐसे फख्रिया कलमात इनकी ज़ुबान से सुने। इस तहरीर से जाहिर है कि इकबाल 9वीं या 10वीं जमात से बाकायदा गज़लें लिखने लगे थे और मुशायरा में शरीक भी होते थे। दाग का शोहरा सुनकर इनको खातिर का कुछ गज़लें इसलाह के लिए भेजी और यूँ FA के साल अव्वल में इनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। इकबाल की लाहौर आमन तक या बकौल फौक क्याम लाहौर के इब्तदाई अयाम तक वो गाहे बगाहे खतो खताबत के जरिए कलाम पर इसलाह लेते रहे। इकबाल की दाग के साथ बिलमुशाफा मुलाकात कभी नहीं हुई थी। अलबत्ता इस ख्वाहिश की तरफ इशारा इनके एक शेर में मौजूद है। यही है जो शौक मुलाकात हजरत तो देखेंगे इकबाल मलक दक्कन भी। बाद में अगरचा इकबाल ने इसलाह लेना तर्क कर दिया, तहम अजाजिया एहतराम के तौर पर शगिर्दी दाग की नस्बत कायम रही है। तलक इनके क्याम लाहौर के इब्तदाई जमाने की चंद गजलों से अजाँ है। मसलन शोर महशर के शुमारा दिसंबर 1896 में शाया शुदा इनकी गजल का मकता है। नसीम व तशना ही इकबाल कुछ नाजा नहीं इन पर, मुझे भी फख्र है शगिर्दी दाग सखदना का 75वां। इसी दौर की एक और गजल का मकता है, जनाब दाग की इकबाल ये सारी करामत है, तेरे जैसे को कर डाला सखना भी संजोर ने। 1898 में वजाहत हुसैन जनजानवी ने के कौमी मातम में भी इन्हीं तलमीज हजरत के दाग कहा गया। फिर 28 फरवरी 1899 के एक खत बनाम मौलाना एहसन माहरवी में इकबाल ने इन्हीं दाग की तस्वीर अरसाल करने की फरमाइश की। 1905 में वफात दाग पर लिखी गई नज़म में भी जो बांग दरा में शामिल है और जो दरअसल मखजन के अप्रैल 1905 की शुमारा यादगार दाग नंबर में एक बंद के इजाफे के साथ छपी थी, इसका तलक का वाज़े जिक्र है। अलावा इसके इकबाल ने दाग की वफात पर नवाब मिर्ज़ा दाग के अल्फाज से इनकी तारीख वफात निकाल ली। सो दाग से इसलाह का ज़माना मुख्तसर था और इसका तयन 1893 और 1896 के दरमियानी अरसा में किया जा सकता है। बहरहाल दाग की शागिर्दी का इतराफ़ इकबाल को उम्र भर रहा। इकबाल की स्कूल और FA के ज़माने में इस्तेमाल करदा चंद किताबें महफूज हैं। इनमें से एक किताब के किसी सफ़े पर जो उन्होंने 9वीं जमात में पढ़ी राग के अलाब तहरीर किए हैं जिनके नीचे गालब बैदल नासख और वाकफ के मुख्तलिफ अशार पेंसिल से तहरीर करता है। इसी किताब के एक और सफ़े पर फिर अलाग के अलाप लिखे हुए हैं और दो एक कुतब जो FA में इनके ज़ेर इस्तेमाल हैं इन पर अपना तखल्लस इकबाल दर्ज किया है। इन तहरीरों से दो बातों का पता चलता है, पहली ये कि वो रागों के अलाप या फन मौसीकी के तकनीकी पहलू से आगाह थे और शहर का जो तल्लक सूत या मौसीकी से हाई से समझते थे, और दूसरी ये कि उन्होंने लफ्ज़ इकबाल बतौर तखल्लुस FA के साले अव्वल में इख्तियार किया था। 4 मई 1893 को जब मैट्रिक के नतीजे की खबर इकबाल को मिली तो इकबाल ने सोहरा सेहरा बांध रखा था और इनकी बारात सियालकोट से गुजरात रवाना होने वाली थी। इसी रोज़ इनकी शादी गुजरात के एक मतवल कश्मीरी घराना में हुई। इनकी बीवी का नाम करीम बी था। शादी के वक़्त इकबाल की उम्र 16 और करीम बी की 19 वर्ष थी। इकबाल के खुसर डॉक्टर अता मोहम्मद इस ज़माने के मशहूर और मरूफ सर्जन थे और करीम बी इनकी सबसे बड़ी साहबजादी थी। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद मालो दौलत के एतबार से डॉक्टर अता मोहम्मद की टक्कर के ना थे। सियालकोट और गुजरात करीब करीब हैं, इसलिए कयास किया जा सकता है कि इकबाल और करीम बी के बुजुर्गों को जानने वाले कश्मीरी बरादरी के किसी फर्द ने ये रिश्ता कराया होगा और रिवाज के मुताबिक वालदेन ने शादी तय कर दी। सफ़ा नंबर 147। इस ज़माने में मुनासिब रिश्ता मिलने पर कम समनी में बच्चों का ब्याह करना कोई मायूब बात ना समझी जाती थी। इकबाल के वालदेन इस शादी में शरीक हुए और बड़ी चाहत से बहू को घर लाए। गो इकबाल की बाद की तहरीरों से मालूम होता है कि वो इस शादी पर रजामंद ना थे। बहरहाल जब घर के माहौल में मोहब्बत और शफकत के साथ इज्जत और एहतराम का पहलू मलहूज़े रखना लाजम हो तो बुजुर्गों के सामने नौउम्र लड़कों के लिए इख्तलाफ राय का इजहार मुमकिन ना था। करीम बी से इकबाल के यहाँ 2 बच्चे हुए। 1896 में मराज बेगम पैदा हुई। खुदा ने इन्हीं सीरत और सूरत से नवाजा था मगर इन्हीं हना जेर का मर्ज लाहक हो गया था। बहुत इलाज कराई लेकिन वो जानबाज ना हो सकी। इनका इंतकाल 1915 में सियालकोट में बाउम्र 19 वर्ष हुआ। इमाम साहब के कब्रस्तान में अपने दादा और दादी की कब्रों के करीब दफन हुई लेकिन ख्वाजा फिरोजुद्दीन बैरिस्टर के बयान के मुताबिक वो गुजरात में फौत हुई। इस सूरत में मुमकिन है कि मैयत को सियालकोट ले जाया गया हो। वो फरमाते हैं डॉक्टर साहब की अहलिया बच्चों को लेकर गुजरात चली गई थी। वहाँ बच्ची बीमार हो गई। डॉक्टर साहब को बेहद ख्याल था कि बच्चे और इनकी वालदा इनके पास रहें ताकि बच्ची का पूरा इलाज हो सके लेकिन ये ख्याल भी था कि मेरी बच्ची बहुत अक्लमंद है, वो अपनी वालदा को ज़रूर राज़ी कर सकती हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आरजू पूरी ना हुई और बच्ची गुजरात में फौत हो गई। 1898 में आफ्ताब इकबाल पैदा हुए। करीम बी ने इकबाल के इंतकाल से तकरीबन 8 साल बाद 1946 में अपने आबाई घर में वफात पाई और गुजरात ही में दफन हुई। सफ़ा नंबर 147। 1895 में स्कॉच मिशन कॉलेज से इकबाल ने FA का इम्तिहान सेकंड डिवीज़न में पास किया और इन्हें मजीद तलीम के हसूल के लिए लाहौर का रुख करना पड़ा क्योंकि स्कॉच मिशन कॉलेज में अभी BA की क्लासें शुरू ना हुई थीं और वो मरे कॉलेज के नाम से मसूम ना हुआ था। वैसे सियालकोट की महदूद फजा से लाहौर की वसी तर फजा में पहुँचना इकबाल के जहनी इरतका के लिए अजबस लाजम था। सियालकोट में इकबाल की 18 साल जिंदगी का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि वहाँ की फ़जा महदूद में इकबाल का पनपना की सूरत भी मुमकिन ना था। घर में वह अपने वालदन के एहतराम के सबब इनके सामने दम ना मार सकते थे। इनके ख़ानदान में सिर्फ शेख अता मोहम्मद ही कमाने वाले थे। शेख नूर मोहम्मद अपना कारोबार करीब करीब तर्क कर चुके थे। अगर वो जारी भी रहा तो वक्त गुजारने के साथ साथ कोई मकूल आमदनी का जरिया ना था। इसी बिना पर माली एतबार से अपना सिलसिला तलीम जारी रखने के लिए इकबाल शेख अता मोहम्मद के दस्ते नगर थे क्योंकि इकबाल को अगर शेख अता मोहम्मद की आनत मैसर ना आती तो इनकी तलीम का सिलसिला मुंतकता हो जाता। इल्मी एतबार से इकबाल पर अपने उस्ताद सैयद मीर हसन की शख्सियत हावी थी और फन शेर गोई में इन्होंने कुछ अरसा बेशतर दाग की शिगिर्दी इख्तियार की थी। इनसे इसलाह लेते और इनकी तबता में शेर कहते थे लिहाजा इलम और शायरी के मैदानों में भी अभी इनमें खुद इतमादी पैदा ना हुई थी। ताहम कुदरत के बोए हुए बीज में फैलने फूलने की अहलियत तो थी क्योंकि किसी हद तक इसकी अब्यारी हो चुकी थी लेकिन कली का फूल बनकर खिलना अभी बाकी था। सफ़ा नंबर 149 माखज बाब 4। नंबर 1 इस ख्वाब का जिक्र इकबाल ने किया है। देखिए इकबाल के हजूर इज सैयद नज़ीर नियाजी जिल्द 1 सफ़ा 95। नीज देखिए जिक्र इकबाल इज अब्दुल मजीद सालक सफ़ा 10 फिक्र इकबाल इज खलीफा अब्दुल हकीम सफ़ा 14-15। नंबर 2 ये कयास इस बुनियाद पर किया गया है कि शेख नूर मोहम्मद ने अपने पोते इजाज़ अहमद को इसी उम्र में सैयद मीर हसन के पास पढ़ने के लिए बिठाया था। सैयद नज़ीर नियाजी की राय में इकबाल पहले उम्र शाह के मकतब में बैठे जो मस्जिद मीर हसामुद्दीन में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे और फिर उन्होंने मौलाना गुलाम हसन से दर्स लेना शुरू किया। नंबर 3 इकबाल के हजूर जिल्द 1 सफ़ा 94। नंबर 4, शुरू में सैयद मीर हसन स्कूल की प्राइमरी जमातों को फारसी, अरबी, हिसाब, जुग्राफिया ऐसे मजामीन पढ़ाया करते थे, और प्राइमरी की मुअल्लिमी के खात्मे के बाद मिडल और हाई जमातों के उस्ताद मुकर्रर हुए। इलामा सर इकबाल के उस्ताद मजमून अज आफ्ताब अहमद नरेंग ख्याल इकबाल, नंबर 1932 सफ़ा 65। नंबर 5, इकबाल के हजूर जिल्द अव्वल सफ़ात 169-70, रवायात इकबाल मरतबा अब्दुल्ला चुगताई सफ़ा 22, जिक्र इकबाल सफ़ात 8-9। इकबाल इसी सिलसिला में बयान करते हैं, मेरे वालिद एक रोज़ घर आ रहे थे, एक हाथ में रुमाल था, रुमाल में थोड़ी सी मिठाई, असनाए राह में क्या देखते हैं कि एक कुत्ता भूख के मारे दम तोड़ रहा है, इसकी हालत देख कर इनसे रहा ना क्या, मिठाई समेत रुमाल इसके आगे डाल दिया, कुत्ते ने मिठाई खाना शुरू कर दी, मिठाई खा चुका तो ऐसा मालूम होता जैसे इसे पानी की तलब है, वालिद माजिद ने किसी ना किसी तरह पानी भी पिला दिया, रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक मकान है जिसमें मिठाई के तबक ही तबक रखे हैं, सुबह आँख खुली तो इस एहसास के साथ कि ये इस नेक अमल का समरा था जो कल इनसे सरज़द हुआ, चुनाचा इस रोज़ से इन्हें यकीन हो गया था हमारे दिन फिरने वाले हैं। इकबाल के हजूर जिल्द अव्वल सफ़ा 169। नंबर 6, अनवारे इकबाल मरतबा बशीर अहमद डार खत मोरखा 24 फरवरी 1916 बनाम शाह सुलेमान फलवारी सफ़ा 178। नंबर 7, इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला जिल दोम खत मोरखा 13 अगस्त 1918 बनाम अकबर अलाबादी सफ़ात 66-67। नंबर 8, जिक्र इकबाल सफ़ा नंबर 277। नंबर 9, सर सैयद अहमद खान की इस्लाहात व मजहबी नज़रियात इस जे एम एस बालिशोन अंग्रेजी सफ़ात 14-16 किताबियात सफ़ात 99-100। नंबर 10, सफ़ात 4, 5, 7-9, 11-14, 45-46 किताबचा मजकूर। नंबर 11, देखिए हयात जवेद इस अल्ताफ़ हुसैन हाली हिस्सा अव्वल सफ़ात 75-86, 85-95, 115-117, 129-131, 144-152 हिस्सा दोम सफ़ात 30-31, 114-153, 170-179। कानपुर में एक मुसलमान को महज इसलिए फांसी पर लटका दिया गया कि इसने अंग्रेज़ों को नसारा कहा था। रसाला अहकाम तआम अहल किताब सफ़ात 2, 3, 8, 11, 12, 15, 28 तफसीर कुरान जिल दोम सफ़ात 9, 10, 15-48 112-120, 149-168 जिल्द सोम सफ़ात 209-216 जिल्द चहारम सफ़ात 33-75। सर सैयद अहमद ख़ान की हयात खिदमात एस जी एफ आई ग्रहम अंग्रेज़ी सफ़ा 124 हिंदी मुसलमान इज हंटर अंग्रेज़ी सफ़ात 11-21, 75-93 तबसरा हयात किताब हंटर सफ़ात 13-28, 45 खुतबात अल अहमदिया सफ़ात 353-395 सर सैयद के आखिरी मजामीन सफ़ात 53-58 मजामीन तहजीबुल इखलाक जिल्द दोम सफ़ात 111-113। नंबर 12, हयात जवेद हिस्सा दोम सफ़ा 42 हिस्सा अव्वल सफ़ात 118-132 सर सैयद अहमद ख़ान की हयात व खिदमात अंग्रेज़ी सफ़ा 185। नंबर 13, हयात जवेद हिस्सा दोम सफ़ात 4-8-9 हिस्सा अव्वल सफ़ा 15। नंबर 14, हयात जवेद हिस्सा दोम सफ़ात 112-114-170 मजमुआ लेक्चर हाय सर सैयद मरतबा सराजुद्दीन सफ़ात 178-195 मजामीन तहजीब उल इखलाक जिल्द दोम सफ़ात 161-182-182। नंबर 15, हिंदी इस्लाम इज मरे टाइट्स अंग्रेज़ी सफ़ात 297-208 हयात जवेद हिस्सा दोम सफ़ात 200-208-216 मजामीन तहजीब उल इखलाक जिल्द दोम सफ़ात 21-22-29-50-183 खुतबातुल अहमदिया सफ़ा 4 मजमुआ लेक्चर हाय सर सैयद सफ़ात 176-195। नंबर 16, मजमुआ लेक्चर हाय सर सैयद सफ़ात 181-182 हयात जवेद हिस्सा दोम सफ़ात 201-206-216-253 सर सैयद अहमद ख़ान की इस्लाहात व मजहबी नज़रियात अंग्रेज़ी सफ़ात 28-76 अंग्रेज़ी हिंदी इस्लाम अंग्रेज़ी सफ़ा 199 नंबर 17 हयात जवेद हिस्सा दोम सफ़ा 317, नंबर 18 ऐज़न हिस्सा अव्वल सफ़ा 133 हिस्सा दोम सफ़ात 54-63, मजामीन तहजीब उल इखलाक हिस्सा दोम सफ़ा 5-8, 23-48, 50-59, 69-101, 127-133, सर सैयद अहमद ख़ान की असलाहत व मजहबी नज़रियात अंग्रेज़ी सफ़ात 25-26, नंबर 19 मजामीन तहजीब उल इखलाक जिल्द दोम सफ़ात 29-572, हिंदी इस्लाम अंग्रेज़ी सफ़ा 204, हयात जवेद हिस्सा अव्वल सफ़ात 133-137 हिस्सा दोम सफ़ा 63, नंबर 20 हयात जवेद हिस्सा दोम सफ़ात 46-66, 283-248, हिंद में इस्लामी निज़ाम तरीम की तारीख एक जस्टिस सैयद महमूद अंग्रेज़ी सफ़ा 148, नंबर 21 सर सैयद अहमद ख़ान की असलाहत व मजहबी नज़रियात अंग्रेज़ी सफ़ा 46, मजमुआ लेक्चर हाय सर सैयद सफ़ात 49-50, हिंद के निज़ाम तरीम पर तबसरा इस सर अल्फर्ड डक्कर क्राफ्ट अंग्रेज़ी सफ़ात 312-314, नंबर 22 सर सैयद अहमद ख़ान की असलाहत व मजहबी नज़रियात अंग्रेज़ी सफ़ा 34, मजमुआ लेक्चर हाय सर सैयद सफ़ात 197-198, हयात जवेद हिस्सा अव्वल सफ़ात 95-100, 103-106, हिस्सा दोम 37-40, नंबर 23 हयात जवेद हिस्सा अव्वल सफ़ात 127-137, 139-140-144, 152-169, नंबर 24 हयात जवेद हिस्सा अव्वल सफ़ात 169-177, हिस्सा दोम सफ़ात 63-64, 71-76, 240, सर सैयद अहमद ख़ान और मुस्लिम सियासत में अलहदगी की तारीख इज अब्दुल हमीद अंग्रेज़ी सफ़ा 114, नंबर 25 हयात जवेद हिस्सा दोम सफ़ात 47-48, हिस्सा अव्वल 101-102, नंबर 26 हयात जवेद हिस्सा अव्वल सफ़ा 192, मजामीन तहजीब उल इखलाक जिल्द दोम सफ़ा 55, मजमुआ लेक्चर हाय सर सैयद सफ़ात 247-252-253-253, 266-267, 275-276, नंबर 27 हयात जवेद हिस्सा अव्वल सफ़ात 204-210, 214-215, मजमुआ लेक्चर हाय सर सैयद सफ़ा 215, सर सैयद अहमद ख़ान और मुस्लिम रियासत में अलहदगी की तहरीक अंग्रेज़ी सफ़ात 144-147, नंबर 28 एक कौम अमले तश्कील में इस सरिंदर नाथ बैनर्जी अंग्रेज़ी सफ़ात 41-48, हिंद में जदीद इस्लाम इस डब्ल्यू सी स्मिथ अंग्रेज़ी सफ़ा 186, नंबर 29 सियासी हिंद इज सर जान क्योनस अंग्रेज़ी सफ़ात 48-49, तारीख कौमी आज़ादी की तारीख अजवी लोट अंग्रेज़ी सफ़ात 47-51, बेचीनी हिंद अजवी चरोल अंग्रेज़ी सफ़ात 43-44-55, नंबर 30 हयात जवेद हिस्सा अव्वल सफ़ात 111-115, खुतबात सर सैयद मरतबा सर रास मसूद सफ़ा 66, नंबर 31 ज़िक्र इकबाल सफ़ा 277, नंबर 23-32 सैयद मीर हसन के मजीद हालात के लिए देखिए ज़िक्र इकबाल सफ़ात 271-279, नरेंग ख्याल इकबाल नंबर 1932, मजमून इलामा सर इकबाल के उस्ताद इज आफ्ताब अहमद सफ़ात 62-76, रवायात इकबाल सफ़ा 4-55, 62-70, नंबर 33 रोज़गार फ़कीर नक्श सानी इस फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन सफ़ात 57-58, नंबर 34 ऐज़ा सफ़ात 126-128, बाज़ उलमा के इतराज़ पर के आयात मज़कूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है, इकबाल ने दूसरा मादा तारीख निकाला, देखिए रोज़गार फ़कीर जिल्द दोम सफ़ा 157, सरूर रफ्ता मरतबा गुलाम रसूल महर सफ़ा 217, हयात जवेद में इकबाल और इनके उस्ताद दोनों के तरीकों का जिक्र है लेकिन नाम किसी का तहरीर नहीं, अलबत्ता वजाहत हुसैन जनजानवी ने कौमी मातम के नाम से जो मरक्का छापा था इसमें इकबाल के मादा तारीख के मतलब तहरीर है। मुंशी मोहम्मद इकबाल साहब तालब इलम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर तलमीज़ हजरत दाग सफ़ा नंबर 154, नंबर 35 रोज़गार फ़कीर नक्श सानी सफ़ा 127, नंबर 36 ज़िक्र इकबाल सफ़ा 279, نمبر 37 اقبال دربن خانہ از خالد نذیر صوفی صفحات 8-10 نمبر 38 صفحات 12-14 کتاب مذکور نمبر 39 صفحات 9-10 کتاب مذکور اردو ترجمہ از ضیاء الدین برنی صفحہ 12 نمبر 40 آئینہ اقبال مرتبہ عبداللہ قریشی صفحہ 254 مطالعہ اقبال مرتبہ گوہر نوشاہی صفحہ 36-37 مضمون سلسلہ قادریہ میں علامہ کی بیعت از نور محمد قادری مہنامہ ضیاء حرم اپریل 1975 صفحات 43-46 اوان شریف ضلع گجرات میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ شیخ نور محمد اقبال کو بیعت کرانے کے لیے قاضی سلطان محمود کے پاس لے گئے ہوں۔ اقبال اپنے خط بنام سید سلمان ندوی میں بھی تحریر کرتے ہیں کہ وہ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں۔ اقبال نامہ حصہ اول صفحہ 79 نمبر 41 ذکر اقبال صفحہ 14 نمبر 42 صفحہ 15 کتاب مذکور نمبر 43 اقبال کے حضور جلد اول صفحات 60-61 نمبر 44 نقوش آبیتی نمبر 1946 صفحہ 6 نمبر 45 صفحات 127 128 154 156 کتاب مذکور نمبر 46 ایزن صفحات 126 127 نمبر 47 خم خانہ جوید صفحہ اول صفحہ نمبر 329 سری رام کے مطابق اقبال سانس تمیز سے شعر گوئی کا شوق رکھتے تھے نمبر 48 صفحات 47-48 کتاب مذکور سر عبد القادر لکھتے ہیں کہ شعر کا شوق تو اقبال نے بچپن سے پایا مگر سید میر حسن کے فیضان صحبت کے زمانہ میں ان کے اس شوق کو بہت ترقی ہوئی۔ اقبال خندق نزک نظر لکھنؤ مئی 1902 متن کے لیے دیکھیے اقبال جادوگر ہندی نژاد از عتیق صدیقی صفحہ 140 نمبر 49 روایات اقبال صفحہ 13 نمبر 50 سرور رفتہ مرتبہ غلام رسول مہر و صادق علی دلاولی صفحات 143-134 صفحہ نمبر 51 راوی سد سالہ اقبال نمبر اپریل 1974 صفحہ 80 نمبر 52 انوار اقبال صفحہ 83 سر عبد القادر کے بیان کے مطابق امتحان انٹرنس پاس کرنے کے بعد اقبال نے داغ سے بذریعہ خط و کتابت تلمذ کی ٹھہرائی اور اس مدت تک ان سے اصلاح لی جب تک ان نئے رنگ میں مخمس مسدس یا ترجیح بند لکھنے شروع کیے۔ جس سال داغ سے اصلاح لینا شروع کی اسی سال ان کی شادی ہو گئی یعنی 1893 میں۔ اقبال خدانگ نظر لکھنؤ مئی 1902 نمبر 53 خم خانہ جوید جلد اول صفحہ 307 نمبر 54 دباچہ بانگ درا صفحات زے ہے نمبر 55 مشہیر کشمیر صفحہ 184 نمبر 56 روزگار فقیر جلد دوم صفحہ 298 نمبر 57 سرور رفتہ صفحات 145-147 نمبر 58 باقیات اقبال مرتبہ عبداللہ قریشی صفحہ 396 نمبر 59 اقبال نامہ حصہ اول صفحات 3-4 نمبر 60 باقیات اقبال مرتبہ عبداللہ قریشی صفحہ 483 نمبر 61 اقبال درخانہ صفحات 101-107 یہ کتب اقبال کے سیالکوٹ کے ابائی مکان میں موجود تھیں۔ دیکھیے روایات اقبال صفحہ 188 کوسین میں نوٹ نمبر 62 اقبال دربن خانہ کے مصنف کے مطابق اقبال جب میٹرک کا امتحان دینے گجرات سینٹر گئے ہوئے تھے تو وہاں ڈاکٹر عطا محمد نے انہیں دیکھا اور پسند کیا اور صاحبزادی کے لیے سلسلہ جنابی کی لیکن اس روایت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دیکھیے صفحہ 11 کتاب مذکور ان ایام میں سیالکوٹ میٹرک کے امتحان کا سینٹر نہ تھا البتہ گجرات اور لاہور تھے۔ لاہور دور ہونے کے سبب اقبال گجرات سینٹر میں میٹرک کا امتحان دینے گئے۔ سید ذکی شاہ کے بیان کے مطابق اقبال کی شادی کے موقع پر پسرور کی مشہور کنچکنی گانے والی پیراں دتی نامی برات کے ساتھ گئی تھی۔ روایات اقبال صفحہ 26 بقول سید نذیر نیازی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور بزرگوں کا کے لیے گانے کی علیحدہ محفل بھی جمی۔ شیخ اجاز احمد کی اطلاع کے مطابق اس زمانے میں پیراں دتی اور اس کی بہنیں پسرور کی پریاں کہلاتی تھیں۔ گانے کی محفلوں کا انتظام شیخ نور محمد کے ایک داماد نے کیا تھا۔ راکم کی اطلاع کے مطابق بعد میں پیراں دتی اپنے خاندان کے دیگر افراد سمیت تائب ہو گئی۔ خداوند تعالیٰ کے حضور میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور ازواجی زندگی کی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ پیراں دتی کی اپنی دینداری شرافت اور حسن سلوک کے سبب پسرور کے اہل دل نے انہی اور ان کے خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ البتہ تنگ نظر اور بلند جذبات سے آری لوگوں نے انہیں معاف نہ کیا اور ہمیشہ معتوب ہی قرار دیا۔ नंबर 63 रवायात इकबाल सफ़ा 75, नंबर 64 ऐज़ा सफ़ा 79, नंबर 65 आफ्ताब। इकबाल शेख एजाज अहमद से 7 या 8 माह बड़े हैं। शेख एजाज अहमद की तारीख़ पैदाइश इनके बयान के मुताबिक 12 जनवरी 1899 है।